इस आध्यात्मिक आनंद के आदान प्रदान में भाग ले सकते हैं, जहां जो आदेश पालन करने वाले और आदेश देने वाले। सेवितता सेवक लेकर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज बिटवीन द प्रिडोमिनेटर एंड द प्रिडोमिनेटेड। प्रिडोमिनेटर यानी कि जो अधिकार चलाते हैं, और प्रिडोमिनेटेड यानी कि जो जिनके अधिकार में अधिकार के वश में है। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज, ऐसा एक उदाहरण है जो अधिकार चलाने वालों में और अधिकार जिनके प्रति चलता है, इज द लॉर्ड रासलीला विद द गोपीज। भगवान का ये दिव्य रासलीला गोपियों के साथ। द गोपीज आर प्रीडोमिनेटेड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनल पोटेंसी। गोपिया जो अधिकार जिनके प्रति चलाए जाते हैं उनका ही विस्तृत रूप है। एंड देयरफॉर द लॉर्ड्स पार्टिसिपेशन इन द रासलीला डांस इज नेवर टू बी कंसिडर्ड लाइक द मंडेन रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वुमन। इसलिए भगवान जहां भाग लेते हैं रासलीला में, उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए, ये साधारण स्त्री पुरुष के समान। इट इज रादर द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज लिविंग एंटिटीज। परंतु ये बहुत ही उच्चतम आदान प्रदान है भावनाओं का भगवान और जीवों के बीच में। द लॉर्ड गिव्स द फॉलन सोल द चांस फॉर द हाईएस्ट परफेक्शनल लाइफ। भगवान जीवों के लिए एक अवकाश देते हैं उच्चतम जीवन को प्राप्त करने के लिए। लॉर्ड ब्रह्मा इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लीट कॉस्मिक शो। ब्रह्मा जी को ये अधिकार दिया गया है ये भौतिक ब्रह्मांड के शो दिखाने के लिए। एंड देयरफॉर ही प्रेज द लॉर्ड बेस्टो हिज ब्लेसिंग्स। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण उनके प्रति आशीर्वाद दे, सो दैट ही मे एक्सक्यूट हिज पर्पज, ताकि वो अपने कार्य को ठीक से कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानाञ्जनशुभाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमिष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणानलिता श्रीविशाखालितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि अष्टदेशकारिणे साकल्पसंवशिता कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्त कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित होकर उनके गुणों की महिमा को जानकर आनंद के कारण दो बार अधब्र करुणो भगवान अधम रहने की अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं। फिर से कहते विवृद्ध प्रेम स्मित न, श्रीलोक प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि एक्सेसिव, एक्सेसिव यानी कि भर भर के प्रचुर मात्रा में प्रेम को प्रदान करने वाले। इसलिए छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज जब रुद्रासुर बन गए थे वो कृष्ण की स्तुति करते हैं, इंद्र के साथ उनका युद्ध चल रहा है, युद्ध करते करते वो भगवान की स्तुति करने लगते हैं। युद्ध में आसक्ति नहीं है बल्कि अपने धाम जाना चाहते हैं और इसलिए वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान के प्रति। न नाक प्रष्टम न च पारनिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, वो कहते कि मुझे रसाधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे इस भौतिक जगत का सार्वभौम नहीं चाहिए, न तो मैं इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म लेने के लिए इच्छा करता हूं। लोग कहते ना शादी के बाद 7 जन्म साथ में रहेंगे, उसकी भी इच्छा नहीं करते। वो कहते यहां मुझे जन्म नहीं लेना है, मुझे वापिस, वो कहते असमंजस विरहीय कांक्षी, हे कृष्ण कि मैं इतना विरह अनुभव कर रहा हूं, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। वहां श्रीदेव गोस्वामी इस शब्द का उपयोग करते असमंजस, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उसका अनुवाद दिया है, सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, जितना ही अवकाश है आईटी इंडस्ट्रीज में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने के लिए, कोई भी कमा सकता है, परंतु यहां जितने सारे अवकाश है उसके स्रोत है सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। ऐसी उपमा सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में कहते हैं, प्रभुपाद जी इंग्लिश में इससे बढ़कर और सुंदर शब्द नहीं मिलेगा, सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, जितने सारे अवकाश है उसको ठुकरा रहे पृथ्वीसुर, ना ना का प्रश्नम न च पारमिष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मैं सबको नहीं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं आपकी सेवा चाहता हूं। हे कृष्ण जो सारे अवकाशों के स्रोत है, इसलिए भक्ति एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है यहां कृष्ण केंद्र बिंदु में आते हैं हम नहीं। दो प्रकार के छठे स्कंद में पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज अभी निकलने वाले हैं भगवान के धाम, उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नरकों का वर्णन करते हैं। नरकों का वर्णन सुनते ही जो मरने के लिए आया हुआ है अगर नरकों का वर्णन सुनेगा डर जाएगा, जान जाएगा कि यही मेरी गति है, दिस इज द डायरेक्शन आई एम गोइंग। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, वो तो भगवान के धाम जाने वाले, लेकिन फिर भी इतने चिंतित हो गए अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं सेल्फ अब्सॉर्प्शन, इस भौतिक जगत में ज्यादा करके हमारा समय किसमें बीतता है कि मैं, मेरा समस्या ये है, मेरी समस्या वो है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, हम सब हमारे बारे में चर्चा करते रहते हैं। आई कॉन्शियसनेस, भक्ति क्या है, अगर हम भगवान के पास भी आते हैं भगवान हमारे लिए छोटे लगते हैं, ये क्या हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, मैं इतना महत्वपूर्ण है, मेरी समस्या सबसे बड़ी है। जैसे प्रभु जी परसों एक कहानी सुना रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए और उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद जी टू मच प्रॉब्लम, मेरी जिह्वा, मेरा उदर, मेरा शिश्न इतने मुझे सताते हैं, इस जिह्वा को सहन करना बहुत कठिन है, वड़ा चाहिए, पाव चाहिए। तो प्रभुपाद जी से कहने लगे, प्रभुपाद जी इसको सहन करना बहुत कठिन है, गिव सम इंस्ट्रक्शन, मुझे कुछ आदेश दीजिए। प्रभुपाद जी ने वही मार उनको दिया, ये सबको दे दे। उसको लगा प्रभुपाद जी मेरे लिए कुछ तो विशेष देना चाहिए, उन्होंने फिर से दोहराया प्रभुपाद जी को. प्रभुपाद जी ने कहा वाई बॉदर आयो साहब अटंग, तो अपना भी जीवा बाहर निकल कर दिखाए. केवल आपके पास जीवा नहीं है, मेरे पास भी जीवा है, सबकी जीवा वैसी है. यानी कि जीवा को इतना महत्वपूर्ण देते हैं, इन देखने की जो आंखें उनको महत्वपूर्ण देते हैं. माई ईयर्स आर हैविंग प्रॉब्लम, माई टंग हैज अ प्रॉब्लम, मेरा शरीर समस्या देती है. ये क्या है कि भगवान के पास आने पर भी हमारे समस्याओं को लेकर जाते हैं और अपने आप को इतना बड़ा बनाते हैं, नकारात्मक दृष्टि से या सकारात्मक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण हूं. और कृष्ण क्या है, बहुत छोटे हैं. जब हमारी भावनाओं के कारण, जब कृष्ण भावना के साथ मैं भावना का संघर्ष हो जाता है, फिर वो भक्ति बहुत कठिन बन जाते हैं करने के लिए. इसलिए भागवत का महत्वपूर्ण क्या है, भागवत बार बार हमें यही दिखाता है कृष्ण उनके नाम, उनके रूप, उनकी गुण, उनके लीला इतने महान है, एक्सेसिव है, अनलिमिटेड है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है. जैसे कल हम किसी के दुकान में गए थे, वहां देखा वो दुकान में लिखा था कि एक बोर्ड था उसमें लिखा था गॉड योर सी सो वास्ट एंड बिग एंड माय शिप इज वेरी स्मॉल. भगवान ने समुद्र बनाया कितना महान है, और हमारा हमारी जो बोट है या नाव है वो क्या है, वो बहुत छोटी. तो वैसे ही है, सकारात्मक दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से हमारे अच्छे गुण या हमारे बुरे गुण भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपाओं के सामने कुछ भी नहीं है. लेकिन दुर्भाग्यवश हम इतना महत्व देते अपने आप को, हमें लगता है कि न तो भगवान के पास मेरे जैसे अच्छे गुण है, इसलिए भगवान बनने की इच्छा बनना थे मायावादी लोग, वो भगवान बनना चाहते. और जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है उसको लगता है मेरे इतने बेकार गुण में भक्ति करने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं दुर्भाग्य हूं, आई एम नॉट मेड फॉर डिवोशनल सर्विस, ऐसा लोग कहते. तो यहां ब्रह्मा जी दो शब्दों के द्वारा विवृद्ध और अधभ्र, अधभ्र करुणा भगवान, जब भगवान को जगाने के समय जो पुजारी होते हैं बेल बजाकर भगवान को जगाते, और कैसे जगाते, अधभ्र करुणा भगवान. पहला शब्द यह है कि आप इतने दयालु हो, इसलिए अर्जुन जी को नारद मुनि ने पूछा था कि आपका भगवान से क्या संबंध है, क्यों भगवान को प्रेम करते हो, क्या गुण है जो भगवान के प्रति आपका प्रेम केवल बढ़ाता जाता है. तो अर्जुन ने कहा मैं क्या बताऊं, कृष्ण बिना कोई कारण से भी वो दयालु है, कॉजलेसली कंपैशनेट, सीसी कृष्ण इज कॉजलेसली कंपैशनेट. तो एक गुण को देखकर, इस गुण का अनुभव करते हुए मैं पागल सा बन जाता हूं. इसलिए गीता में रामानुजाचार्य इसके बारे में कहते हैं, जो सातवें अध्याय में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन, इस श्लोक में रामानुजाचार्य ने बहुत सुंदर विवरण दिया है. कृष्ण इन चार लोगों को भी महान समझते, महाआत्मा समझते. क्यों, ये चार में से तीन अर्थो अर्थार्थ और जिज्ञासु कुछ अपेक्षा कर रहे, कुछ चाहते हैं. चाहने वालों की जो कुछ चाहते हैं ना, उनको कौन दे रहा है इसकी परवाह नहीं होती. वो किसके बारे में सोचते हैं, मेरी मांग पूरा करो, तनखा बढ़ाओ. तो जो भी मांग पूरा करेगा वो हमारे लिए भगवान है. इसलिए वेश्या के समान वो भटकते रहते हैं, जहां कहीं उनकी मांग पूरी होगी वहां जाओगे. इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य देव ने कहा शिष्णोदर परायण इति उति धाय, धाय यानी कि भागो, इति उति यहां से वहां, वहां से यहां, भटकते रहना इसके लिए, शिष्ण और उदर के परायण के लिए.
तब क्या होगा, शिष्णोदरपरायण कृष्ण ना ही पाए, तो ऐसे भागने वालों को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहां जो मांग करते, मांग मुझे चाहिए, भीख मांगने के लिए जाते, उनमें कोई लॉयल्टी नहीं होती है, जहां मिले वहां प्राप्त करो। इसलिए जो देवी देवताओं के पूजक होते हैं वो देवी देवताओं से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि उनके पीछे जो छुपा हुआ है, जो वरदान दान दे सकते हैं, बहुमान दे सकते हैं, उसको अगर वो मिले तो उनकी पूजा, अगर नहीं मिले तो उनको गाली। इसलिए हम भारत में देखते हैं दो प्रकार के लोग हैं, देवी देवताओं की खूब पूजा करने वाले और उनको गाली भी देने वाले। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं भगवान ने इन लोगों को क्यों महान कहा? ये चार लोग आते हैं, उनमें से तीन खास करके इनकी भी भावना जो देवी देवता के जो पूजक है वैसी ही है, चाहिए कुछ, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं। लेकिन जो देवी देवता की पूजक है वो भटकते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं जो कृष्ण के पास आते हैं उनकी कामना है, कुछ चाहते हैं भगवान से, वो आते हैं, देखो भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, मुझे अच्छा पत्नी चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे ठंडी आप कम कर दो। ऐसे प्रार्थनाओं को भगवान के पास जाकर वो अर्पणाओं को करते, अर्पणा करते। परंतु अगर भगवान नहीं देंगे फिर भी वो भगवान को छोड़ते नहीं है, कृष्ण को या नारायण को वो त्यागते नहीं है, मांगते लज्जा छोड़कर भगवान से ही मांगते। लेकिन अगर भगवान देंगे नहीं, ऐसे नहीं कि वो फिर अनिरुद्ध बापू के पास भाग जाते वो नहीं भागते, वो नारायण के पास ही रहेंगे, कृष्ण के पास ही रहेंगे, उनसे ही मांगेंगे। जैसे हमारे एक भक्त है दामोदर पंडित, आप जानते होंगे, उनके पत्नी को कैंसर हुआ था बहुत साल पहले, वो गुजर गई। तब उनको किसी ने कहा कि आ जाओ, बेंगलुरु के सामने एक बहुत बड़े बाबा रहते हैं, वो आपके पत्नी का बीमारी को दूर कर देंगे। बोले केवल एक बार आ जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो बीमारियों को दूर कर देंगे। आपको अपना हरे कृष्ण मंत्र चालू रखना है, इनके पास जाकर अपने पत्नी के आयु के लिए भीख मांगना है। वो कह सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते थे, वो सोच सकते थे चलो मेरे पत्नी को भी कृष्ण के सामने लगाना है, वो अच्छी भक्त है तो उसको लेकर वहां जाएंगे, उनसे भीख मांगेंगे, मेरी आयु बढ़ा मेरी पत्नी की। उन्होंने कहा नहीं, ये व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है, अगर उसके पास शक्ति हो सकती है मेरे पत्नी को ठीक करने के लिए, लेकिन उसकी जो वृत्ति है वो भगवान मानता है अपने आप को, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा दवाई लेने के लिए, मेरे पत्नी के सामने बैठकर मैं जप करूंगा, उनको भी पूछा बोली नहीं जाना इनको, वहां हम मरेंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे, यहां ही रहेंगे, हरे नाम जप करेंगे। अगर यहां के जो भौतिक डॉक्टर मेरे बीमारी को ठीक कर सकते, क्यों? क्योंकि डॉक्टर कभी अपने आप को भगवान नहीं समझते, अपने आप को डॉक्टर ही समझते, अपने आप को स्पेशलाइज डॉक्टर समझते होंगे लेकिन भगवान कभी नहीं समझते, वहां जाना ही नहीं है, वो नहीं दे। तो हो सकता है उसके कारण उनकी मृत्यु भी होगी, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी थी, लॉयल्टी को क्या कहते हैं, प्रामाणिकता, ऑनेस्टी हो गई, लॉयल्टी मैंने की निष्ठा, अपनी जो निष्ठा है जो भगवान के प्रति है, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति है, वो छोड़ना नहीं चाहते, होना नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। तो हम देखते हैं ऐसे ही यहां भगवान, इसलिए उनको महात्मा कहते, क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण के पास मांगेंगे कि मेरी बीमारी दूर करो, मुझे पैसा दो, अगर नहीं देने पर भी उनका जो उनकी जो निष्ठा है वो कभी कम नहीं होगी, वो ऐसे नहीं कि फिर दूसरे जगह में चले जाएंगे, चलो यहां भी ट्राई करेंगे उधर भी ट्राई करेंगे। इसलिए भगवान उनको क्या कहते हैं, ये महात्मा लोग हैं, ये महान है। कभी कभी हो सकता है कि इनको भगवान वर देने से वर प्राप्त करके उसका भोग लेकर कभी कभी भगवान को भूल जा सकते हैं। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव महाराज जी ने क्या किया, भगवान की पूजा की, नारायण की पूजा की, नारायण ने उनको दिया, उनकी पत्नी दिया और उनका राज्य दिया, और उन्होंने वचन भी लिया था कि 4 महीने के बाद हम आपको मदद करेंगे। 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, काफी महीने हो गए, लेकिन सुग्रीव जो सुख के भोग में रमे हुए थे उनको याद नहीं आई। तो यहां रामायण में बताया गया है कि भगवान के आंखें लाल हो गए, लक्ष्मण के नहीं। अगर भगवान के लाल हो गए तो फिर लक्ष्मण के क्या होंगे? लक्ष्मण का क्रोध हमेशा ज्यादा ही रहता है, भगवान उनको उपशमन करते, उनको शांति करते। परंतु यहां कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में है कि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा जा लक्ष्मण, देखो इस सुग्रीव को क्या हो गया, भूल गए अपने वचनों को। और जो सुग्रीव आते उसका जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में इतना सुंदर किया है, अभी भगवान खुद गर्म है, खुद लाल हो गए, इतने क्रोधित हो गए। तो लक्ष्मण कांप रहे थे, उनके आंखों से अग्नि निकल रही थी, उनकी जिह्वा कांप रही थी, वो दांत को जोर से दबा रहे थे, और जब अपने चरणों को रख रहे थे जमीन के ऊपर भूकंप सा हो रहा था। और जैसे ही गए तब हनुमान जी जान गए, वो बाहर आ गए, उन्होंने उनको समझाया। और जब सुग्रीव को इसका समाचार मिल गया, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा मित्रता बहुत कठिन है संभालने के लिए, ये देखो मेरे पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, अपने वचनों को भूल गया। वो भगवान रामचंद्र जी को क्या कर रहे थे, उनके दोष को देख रहे थे। तो हनुमान जी ने आके उनको समझाया, बोला गलती ही उनकी नहीं है, आपकी है, 100% आपकी गलती है। तो कहने का उद्देश्य है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग जब भगवान के पास आते और किसी पर बस नहीं जाएंगे, लेकिन भोग मिलते ही वो भगवान को भोग के कारण थोड़ा सा यहां उनका अज्ञान छा जाता है, गलत अर्थ लगा देते। इसलिए कृष्ण अपने असली भक्तों को जो भौतिक वैभव को प्रदान नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। जैसे भौतिक वैभव आ जाता है वो एक बाधा बन जाती है। ये हम कहते ना कि मेरा पैसा मैं कृष्ण के सामने यूज करूंगा, तो वैसे लोगों को भगवान देते हैं जो यूज कर रहे पहले से ही। आप धनिक बनोगे, बाद में पैसा यूज करोगे, अब क्या कर रहे हैं, मैं बाद में यूज करूंगा, ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन है। इसीलिए कृष्ण कहा जाता है कि जब कोई भगवान के पास आते हैं बहुत सारे इच्छाओं को लेकर, ये जो निश्चय है हमारी बुद्धि चंचल होने के कारण निश्चितता जो है वो हमेशा बदलती रहती है, ऐसा करो या वैसा करो, ऐसा करो या वैसा करो। देखिए अर्जुन कृष्ण के पास, कृष्ण के साथ में थे, पूरा निश्चय किया था, कितने साल तक, केवल 12 साल के लिए नहीं, 13 साल के लिए नहीं, बचपन से निश्चय किया था कि कौरवों के साथ युद्ध करना है। ये धर्मांध लोग हैं, जो अधर्मी हैं उनका नाश करना ही है, इसके लिए इतने साल तक वो तैयारी कर रहे थे। इसलिए निश्चय बदलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत जागृतता से भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा करनी है, धर्म का स्थापन करना है, इसी उद्देश्य से अर्जुन आए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। तब क्या हुआ, उनका निश्चय बिगड़ गया, कंप्लीट चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, उनके भावनाओं में, उनके निश्चय में परिवर्तन आया। कितना भयावह है, कितना डरावना है, मंदिर में जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गेट के बाहर जाते फिर भोग करने की इच्छा आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अर्जुन जो इतनी तैयारी कर रहे थे और उनका मन इतना एकाग्र था, वो भी कहते मन चंचल है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे मन को अपने अपने काबू रखा था। लेकिन जैसे द्रोण भीष्म जयद्रथ इनको देखा तो क्या हुआ, कंप्लीट चेंज, उनका मन पूरा बदल गया, उनका निश्चय बदल गया, अभी नहीं करना चाहता। और क्यों नहीं करना था उसके लिए कारण भी मिल गया। जैसे भक्ति करने के लिए हमें बहुत सारे कारण मिल जाते हैं, अगर कोई नया इधर तरुण आ गया, हम उसको एक सेकंड के अंदर पूरा गीता सुनाकर उसको गाड़ देते हैं, क्यों भक्ति करना चाहिए, उसको कोई अवकाश ही नहीं मिलता, क्यों भक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्साह इतना रहता है, उसको हम पूरे परिवर्तन करने के मोड में रहते हैं। माला भी दे दिया उसको, 16 माला आपसे चालू, और आपका अभी तक 16 माला नहीं हुआ है। तो ऐसी तीव्र जो निश्चय है, उसी तीव्रता से क्यों नहीं भक्ति करना चाहिए, उतना उत्साह से हम बोल सकते हैं लोगों को, उसी ब्रेथ से। जैसे अर्जुन क्यों करना चाहिए, उसके पास पूरा कारण उपल लगे में उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को दिया था, क्यों युद्ध करेंगे हम, कैसे कृष्ण हमारे साथ लड़ेंगे। जैसे जहां भगवान कृष्ण है वहां विजय निश्चित है, उनका नाम विजय है, और जहां विजय जाते रहेंगे उसके पीछे पीछे विजय मूर्ति उनके पीछे भागते रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे पूरा प्रवचन अर्जुन देते, और फिर से पहले अध्याय में अर्जुन क्या कर रहे हैं, भीष्म और द्रोण को देखकर उनकी भावना बदल गई, और कितने सारे कारणों को देते, 5 प्रमुख कारण, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, व्हाई आई शुड नॉट फाइट, कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। वर्ण संकरता के बारे में, अधर्म के बारे में, सब कुछ अर्जुन भगवान को ध्यान पूर्वक कन्विंस करते हैं, और कृष्ण की बोलती बंद हो जाती है, कृष्ण बोलते भी नहीं है, बोलना बंद हो गया। व्यासदेव जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण ने क्या किया, उनका वाद चल रहा था, ये भगवत गीता में नहीं है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन लेकिन अर्थशास्त्र में कहा है, तो अर्जुन ने कहा धर्मशास्त्र में कहा है, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बड़ा है, अगर आपको अवकाश है अर्थशास्त्र का पालन करना या धर्मशास्त्र का पालन, धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए। तो कृष्ण शांत हो गए, बोले ठीक है, अभी आपने मुझे परास्त कर दिया, अब मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन निश्चय और निश्चयता का भंग होना, ये दोनों अवस्था में अर्जुन कंफ्यूज भी रह गए, वो दुखी रह गए, वो सुखी नहीं थे, उनका विश्वास बढ़ता गया। तब प्रामाणिकता के कारण अर्जुन ने कहा भगवान को, कार्पण्य दोषो पाता स्वभाव, कि कृष्ण कार्पण्य के कारण मैं दुखी हो गया, शिष्यस्त्यं साधिमान त्वं प्रपन्नम्, अब मैं अपने आप को शिष्य समझकर आपके शरण में आया हूं। तब कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि जीव कृष्ण के ही प्रभाव से कृष्ण को कन्विंस कर सकता है कि क्यों भक्ति नहीं करनी, कर सकता है भगवान की इच्छा से, जैसे अर्जुन। लेकिन जब प्रामाणिकता से वो कहेगा कि नहीं, भक्ति नहीं करने से, मेरे मत को प्रस्तुत करने से मैं कितना कष्ट झेल रहा हूं ये आप जानते हो, इसलिए आपके शरण में आया हूं, अब मुझे बता, तो भगवान बोलने लगते हैं। इसलिए यहां प्रेम स्मितन नयना गुरहम, ब्रह्मा जी कह रहे कृष्ण के जो आंखें हैं वो जो कमल फूल के समान है, इसके लिए उदाहरण दिया है विष्णु सहस्त्र नाम में, भगवान की आंखें निमिष अनिमिष खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, खुलते क्यों है और बंद क्यों होते हैं, खास करके कलयुग में, जैसे कि कैरवा चंद्र का वितरणम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो कमल फूल चंद्र के किरणों के द्वारा फूलती है, खिल जाती है, और सूर्य प्रकाश आने से तो बंद हो जाती है, वैसे भगवान अपने इन कमल नेत्रों के द्वारा वो खास करके कलयुग में, अगर कृष्ण उनके जो आंखें सूर्य और चंद्र के समान है, लेकिन सूर्य जैसे तीक्ष्ण जो उनकी आंखें वो बंद हो गए कलयुग में, वो आंखें किसके लिए है, वो पापी लोगों को ऊपर दृष्टि डालने के लिए है, एक आचार्य कहते हैं अगर ऐसे दृश्य डालेंगे तो क्या होगा, हर एक जीव कलयुग का भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस आग को बंद करके रखा हुआ है, उसको खोलते नहीं। कैरव चंद्रिका वितरण, केवल जो चंद्रमा का जो शीतल ऐसे उनके आंखें वो खोल के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा हमारा जो पुण्य है भक्तोन्मुखी सुकृति वो क्या हो जाए, वो खिल जाए, वो बढ़ता जाए, वो बड़ा हो जाए ताकि कृष्ण उसको स्वीकार करे, वही उसको विकसित करते हैं, उनकी कृपा से वो बड़ा बन जाता है और वही कहते हैं ठीक है अभी मुझे अर्पण करो। जैसे माँ अपने बेटे को जो छोटा सा है उसको खाने के लिए मौसम भी देती है, वो खोल नहीं सकता उसको कितना भी प्रयास करे, पकड़ भी नहीं सकता, खोलने की बात ही दूर, तो माँ ही उसको क्या करती है वो खोल के देती, वो खोलती है उसका हाथ भी स्पर्श है उसके साथ में ताकि उसको भी लगे कि मैं खोल रहा हूं, और खोलती है और उसका हाथ छोटा है, उसका छोटा कद का है और वही जो फल है वो भाप करके काट के उसको कहते थे मुझे दो, उसका हाथ पहुंचता भी नहीं है, वो झुक जाती है और उसके हाथ से लेती है और उसको खाती है और उसको उसको कहते थैंक यू आपने मुझे खिलाया। सब कुछ मौसमी देना उनका ही काम था, माने ही दिया, उसको खोल नहीं पा रहा था बेटा, उसको खोला माने ही, उसको तोड़ भी नहीं पा रहा था, उसको तोड़ा माने ही, बाद में बोला तू मुझे दो, दे भी नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ उसका पहुंचता नहीं, उसको लेती है और बाद में उसको कहते कि धन्यवाद मुझे आपने मुझे ये फल दिया। ये है भक्ति। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमको छोटा बनकर कृष्ण के पास आना चाहिए, हमारे समस्याओं के साथ या हमारे अच्छे गुणों के साथ। जब हमारी भावना आई कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना से जब बड़ा बन जाता है तब कृष्ण भावना करने में रुचि नहीं आती, उसमें आनंद नहीं आता। लेकिन आई कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व करते हुए, इसको छोड़कर, इसको त्याग करते हुए कृष्ण की सेवा करनी। इसलिए प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा करते थे, कोई जानता है क्या कहते थे प्रभुपाद जी इसी तथ्य को बताने के लिए, वी आर नॉन एंटिटीज, वी आर नॉन एंटिटीज यानी कि क्या, नॉन एंटिटीज हमारा अस्तित्व है ही नहीं। जब नॉन एंटिटी के रूप में भगवान के पास ले जाते हैं तो हमको देखकर कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी समस्या भी बहुत छोटी, हमारे गुण हैं अच्छे या बुरे दे आर वेरी लिमिटेड, वेरी माइन्यूट, वेरी स्कूल, तो फिर भक्ति करना आसान मिल जाता है। लेकिन अल्टर के सामने खड़े होते हैं हमारे एक्सपेंशन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंशन है, मेरे अच्छे गुण है, मेरे दुर्गुण है, तो इसके सामने मैं कैसे भक्ति कर सकता। इसलिए यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अधभ्र करो ना भगवान विवृत्त प्रेम स्मिते ना, लेट कृष्ण को अलाव करना चाहिए, कृष्ण को अवकाश देना चाहिए ताकि उनका जो दृष्टिपात, कृपा की जो दृष्टिपात अगर हमारे ऊपर गिर जाए, वी बिकम हेल्पलेस, नॉन एंटिटीज, नो रिस्पॉन्स, अगर हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो फिर मर्सी फ्लो हो जाती है, कृपा हमारे अंदर, वी आर लाइक स्मॉल फुगास, फुगा देखो एक पैकेट के अंदर कितने फुगा होते हैं, 100 फुगा ऐसा पड़ा रहता हो निर्जीव के समान, चिपक कर पड़ा रहता है, देखा होगा फुगा, लेकिन अगर उसमें हवा भरो वो इतना बड़ा बन जाता है, उसका कोई उसमें कोई है नहीं, किसी ने दूसरे ने हवा भर दिया, फिर वही फुग्गा को उसी बैग में डालने के लिए प्रयास करो अभी नहीं बैठेगा, नहीं बैठ सकता है। तो ऐसे ही जीव सब और फुग्गा के समान ये भौतिक ब्रह्मांड के प्लास्टिक बैग में जमे हुए निर्जीव के रूप में, उनका कोई नहीं चलता है, लेकिन जब कृष्ण आकर हवा भरेंगे तो बढ़ता जाएगा, कितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना सकते हो, फिर अगर हेलन गैस जलेगा तो फिर वो सब जगह में भटकता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा, लेकिन जब वो सोचेगा कि मैं इतना बड़ा बन गया, देखो मेरे समस्या इतनी बड़ी है, नहीं हवा दूसरे ने भरा हुआ है उसमें, आत्मा अपने स्वभाव से न तो उसको दुर्गुण का हवा है या अच्छे भौतिक गुणों का हवा है, वो अनित है इन दोनों में से, ये हमें जानना चाहिए। इसलिए भक्ति करते समय अगर इस भावनाओं को जागृत करने के लिए प्रयास करेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, न तो मेरे अच्छे गुण महत्व के हैं, न तो मेरे बुरे गुण महत्व के हैं, जितना शक्ति यथाशक्ति अगर मैं कृष्ण की ही सेवा करूं, कृष्ण ही कृष्ण की भावनाओं को बढ़ाओ, तब क्या होगा? तब जैसे ब्रह्मा जी यहां सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अपने आप को ही इज नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस टू हिमसेल्फ, अपने आप को कोई महत्व नहीं दे रहे। वो किसको महत्व दे रहे? एक कृष्ण के गुण को, अगभ्र विवृद्ध प्रेम स्मित, ये दो गुणों के ऊपर भगवान वो ज्यादा महत्व दे रहे कि इतने कृपालु है, अगभ्र अनलिमिटेडली और एक्सेसिव, एक्सेसिव और अनलिमिटेड दोनों वही है, लेकिन प्रेम के कारण बार बार जब देर इज अ रेपुटेशन, संस्कृत में अगर कभी रेपुटेशन हो जाता है एक दृष्टि से देखा जाए, वो क्या है? वो दूषण है, वो भूषण नहीं। लेकिन जब भावनाओं को देखकर, प्रेम की भावनाओं को देखकर, अनुकंपा प्राप्त करने की भावनाओं को देखकर, जैसे किसी को कोई ने पुकारा तो बार बार वही उनका नाम लेकर पुकारने से वो ग्रामेटिकल रॉन्ग एरर हो जाता है। इसे हम देखते हैं भागवत में बहुत बार, कृष्ण कृष्ण महाभाग, एक ही बार बोल रहे हे कृष्ण महाभाग, ये सही ग्रामर है, लेकिन कृष्ण कृष्ण महाभाग क्यों बोल रहे हैं? वहां भावना है। इसलिए यहां ब्रह्मा जी भी वो दो दो बार उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? अपने आप को वो क्या समझ रहे हैं? अपने आप को क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ नहीं रहे, हमें नॉन एंटिटी, मैं फुगा हूं जिसमें कोई है नहीं, सब चिपका हुआ है, उसका कोई लाभ ही नहीं, फुगा को क्या कर सकते? लेकिन हवा भरने वाले आप हो, उसमें हवा भरो और जैसे चाहिए वैसे मुझे यूज करो, जैसे आप चाहिए वैसे मुझे आप यूज कर सकते हो। इस भावना से हम हरि नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे,
और भक्ति का आनंद का महसूस करते हैं। कभी कभी देखते हैं बहुत जपा करने के बाद, बहुत साधना करने के बाद, जो हम अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज फॉर अ कंडीशन। सो भौतिक जीव का सबसे बड़ा रोग क्या है? कि अपने आप को महत्व देना। अब मैं इतना साल का हो गया, अब मेरा बर्थडे आने वाला है, अभी 4 महीने बचे हैं बर्थडे आने के लिए, अभी मैं ये कपड़ा खरीद करूंगा, मतलब आपको रखते हैं ना ऑल्टर पे, आपकी पूजा होगी, जैसे वैष्णव कैलेंडर में अलग अलग दिन होता है वैसे ही। ये भावनाओं के ऊपर आघात करते हुए मैं कलयुग में सबसे बड़ा यही रोग है, इसलिए साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने की क्या, एक्सेसिव कॉन्शियसनेस ऑफ वनसेल्फ, सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन इज ए साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कि अपने आप के बारे में ज्यादा सोचना, अपने बीमारियों के बारे में ज्यादा सोचना, इधर दर्द कर रहा है उधर दर्द कर रहा है, अगर एक्सरे में हमारे अच्छी तरह को देखते उधर कुछ भी नहीं, फिर वो हंसते हैं जोर जोर से क्यों? लेकिन क्योंकि जीव को अटेंशन, इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, एक डॉक्टर बता रहे थे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है क्या, वांटिंग अटेंशन, वांटिंग अटेंशन बाय एनी मीन्स, किसी प्रकार से भी, अगर कुछ महान कार्य करके अगर नहीं मिल रहा है, करने के लिए इतनी शक्ति नहीं है, तो बीमार बन जाओ। जैसे हमारे एक मंदिर में ब्रह्मचारी थे काफी साल पहले, उन्होंने क्या किया, वो किसी भक्तों को फोन किया, फोन के ऊपर कर्चिप डालकर, उन्होंने कहा भक्त जेम्स इज डेड, उसका नाम था भक्त जेम्स, उन्होंने ऐसा समाचार भेज दिया एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो खार प्रोग्राम में उसका मेमोरियल सेरेमनी हम लोग कर रहे थे, लोग बहुत चंचल था वो लड़का, लेकिन अभी मरा हुआ है तो इसीलिए कुछ तो अच्छे गुण देखना चाहिए, तो उसके बारे में बता रहे थे, और उसने किसी को कह दिया था इसको रिकॉर्डिंग करो, बाद में आधा घंटे के बाद समझ में आएगी वो जीवित है, उसने ये सब समाचार भेजा हुआ है, वाई अटेंशन सीखी कि मेरे बारे में सुनना है, कि मरने के बाद मेरी कैसी स्तुति होगी। सही कहता है, ट्रू स्टोरी। तो इसलिए जो राजकारणी होते हैं उनका मूर्ति है, इधर उनका बर्थडे होता है, वो 100% घोष बन जाते हैं। यहाँ जो घोष कभी कभी आपको पकड़ते हैं, वैसे ही लोग हैं जो अपने आप के बारे में सुनने की इच्छा। ये कितना दुर्दशा है जीव का, कोई चाहता नहीं हमारे बारे में सुनने के लिए, केवल हम ही चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आत्मतृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के दिव्य कथाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, इनको ही केंद्र बिंदु रखते हैं, इनके दिव्य भक्तों को केंद्र बिंदु रखते हुए अगर कृष्ण की सेवा करते हैं, तो फिर निश्चित है जो प्रिडोमिनेटेड भगवान हमको डोमिनेट करेंगे, फिर हमें अवकाश मिलेगा उनके साथ लीला करने के लिए, तब हमें अवकाश मिलेगा उनके साथ खेलने के लिए। नहीं तो जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे कि आई कॉन्शियसनेस, मेरी भावना इज सुपीरियर टू कृष्ण भावना, आई कॉन्शियसनेस इज ग्रेटर देन माई कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जब तक चलेगा तब तक वी हैव अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, वी आर ऑल साइकेट्रिक प्रॉब्लम, सबको साइकेट्रिक भौतिक बॉडी शरीर होना आने की बीमारी। हम लोग कैंसर से डरते हैं, कैंसर आने की क्या, कैंसर आने की अननेसेसरी ग्रोथ, जो ग्रोथ हो जाता है। व्हाट इज दिस होल मटेरियल बॉडी इज अ कैंसर, ये आत्मा का कैंसर है, ये अलग ग्रोथ हो गया और इसको इतना महत्व देते हैं हम लोग, इसको नेल पॉलिश लगाते हैं, इसको 1000 रुपए खर्चा करके है। बॉम्बे में बार्बर, जो बार्बर को इतना महत्व नहीं दिया जाता था वैदिक संस्कृति में, उसका दुकान गांव के बाहर रहता था और उसको 4 आना दे दो बाल कट गया, फिर 3 महीना वहां जाने का नहीं। अभी बार्बर का जो फीस है वो डॉक्टर से ज्यादा है। सही है। हम लोग एक बार न्यूयॉर्क में गए थे किसी मॉल से कुछ खरीदी करने के लिए, वहां देखा कि एक कुछ अलग प्रकार का हेयर शैली होती है, उसको करने के लिए 15 मिनट में $100, 4500 रुपए। देखो बाल क्या है, ये रिश्ता है, ऊपर से निकलने वाला रिश्ता है, तो उसके लिए 4500 रुपए खर्चा करो, कैसे इसको मैं इसको कैसे घुमा, इसको कैसे अलग प्रकार का कलर करो, कितना इम्पोर्टेंस। और अपने नाखून, स्त्री अपने नाखूनों को अभी पुरुष लोग ही बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाले हम देखते हैं भागवत में, राधा रानी का और गोपियों का कभी भी किसी ने डिटीज आज तक बना नहीं है, हो सकता आगे भी नहीं बनाएंगे मूर्तिकार लोग, एक्सटेंडेड नेल्स कभी नहीं होगा। राधा रानी और गोपियों का जो नाखून है वो हमेशा कटा रहेगा, केवल पूतना का जो नाखून है वो बड़ा रहता है। ये भी गंदगी है और एक वन और विस्टा, उसके लिए कितना खर्चा है। अमेरिका में इतने बड़े बड़े दुकान है, वो ग्लास बाहर ऐसा खुला रखता है, खुला रखते हैं और उधर लोग बैठे रहते हैं, पुरुष स्त्रिया उसको ब्लीच करना, जितना सफेद बनाओ उसके लिए $50, फिर उसके लिए 5-6 कलर करो उसके लिए $100, अरे उसको काट दो बस और कुछ नहीं करना उसको। यानी कि हर एक शरीर के अलग अलग अंग को हम इतना महत्व दे देते हैं जो यूज नहीं, यूजफुल नहीं है। ये भगवान दिखाने के लिए दिया हुआ है, जितना तुम्हारा शरीर देखो कितना इसमें दुर्दशा है, सो मेनी अनवांटेड थिंग्स आर ग्रोइंग। ये दिखाना चाहते हैं, बाल दिखाना चाहते हैं, तो शरीर ही अनवांटेड है। जब शरीर ही अनवांटेड है तो फिर नाखून और बाल और ये आंखों का आईलिड क्या है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत, हो सकता हम लोग खेती में नहीं रह पाएंगे, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल जो खेती में रहने वाला ही सिंपल है और जो शहर में रहने वाला जितना कॉम्प्लिकेटेड रह सकते उतना रहो, नहीं। वैष्णव सिद्धांत यानी कि ये देखना कि क्या मैं जानबूझकर इस शरीर को महत्व दे रहा हूं, नहीं चाहिए। भगवान ने सब कुछ ये शरीर जितना चाहिए उतना अच्छा बनाया हुआ है, और उसको आर्टिफिशियली अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना, यानी कि क्या हो गया, आई कॉन्शियसनेस ओवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, मेरी भावना, मैं इसको महत्व देना कृष्ण भावनाओं के प्रति। तो जब ऐसा संघर्ष चलता रहेगा फिर भक्ति में क्या होगा, वो इतना सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी जो वेद गर्भ के रूप में उनको स्तुति की गई है, वेद गर्भ यानी कि क्या, कि गर्भ से ही सब वेदों को जानते हो, भगवान के गर्भ में थे तब से सब वेदों को जानते हैं, इसलिए उनका नाम है वेद गर्भ। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप विवृत और असभ्र, एक्सेसिव और अनलिमिटेडली आप कृपालु हो और दयालु, इसलिए किसके लिए मुझे कृपा करो, आपकी ही सेवा करने के लिए। अल्टीमेटली मर्सी सीकिंग, कृपा किसके लिए मांगना है, कृपा इसलिए मांगना है फिर से आपकी ही सेवा करने के लिए, मेरी सेवा बढ़ाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी वो भगवान से प्रार्थना कर, और कितना कष्ट झेलना पड़ा, कृपा मिल गया लेकिन फिर भी क्रिएशन करने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ा ब्रह्मा जी को, लेकिन अपने जो सेवा को छोड़े नहीं, वो करते रहे। और इसीलिए ब्रह्मा जी के गौड़िया संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक है, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, इसलिए श्री चैतन्य देव उनके संप्रदाय में है। क्योंकि ब्रह्मा जी अगर सृष्टि नहीं करते, सृष्टि करने के लिए तैयार नहीं होते, कहते नहीं मुझे नहीं करना है, बहुत कठिन है, तो हमें कोई चांस नहीं मिलता भक्ति करने के लिए। अगर क्रिएशन ही नहीं हो तो बद्ध जीव हमेशा के लिए शाश्वत रूप से कहां रहेंगे, महाविष्णु के शरीर में रहेंगे, कुछ आवाज नहीं, कुछ साउंड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सोते रहो हमेशा के लिए। जस्ट इमेजिन व्हाट अ हॉरिबल कंडीशन। क्योंकि ब्रह्मा जी तैयार हो गए, नहीं मैं तैयार हूं, मैं सृष्टि करने के लिए तैयार हूं, सारे कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार हूं। क्यों, प्रभुपाद जी लिखते, ताकि जीवों के लिए एक अवकाश है, भौतिक ब्रह्मांड ने की बद्ध जीवों के लिए अवकाश कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही हम देखते यहां बहुत कठिन होगा ब्रह्मचार्यों के लिए, हम बॉम्बे वहां के लिए तो बहुत ठंडी है, इसलिए हम गुरु पूजा में जोर से डांस कर रहे थे ठंडी को भगाने के लिए। क्यों, इतना कठिनाई होने पर भी लेकिन भक्त लोग तैयार हो गए रहने के लिए। कभी कभी सांप भी निकलते हैं, कई भक्तों के मित्र है वो लोग, काटते भी है, धसते भी है, लेकिन फिर भी जैसे ब्रह्मा जी तैयार हो गए सृष्टि बनाने के लिए, यहां अगर मंदिर बनाने के लिए हमारी तैयारी होगी इन सारे कठिनाइयों में से, तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो सोए हुए हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, उनको अवकाश मिलेगा दर्शन लेने का, प्रसाद ग्रहण करने का, हरिनाम जप करने का, तो देखो कितना लाभ होगा, किन सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए यहां कृपा इसलिए मांग रहे, ब्रह्मा जी जानते हैं कृष्ण अधभ्र और विवृद्ध, ये दो शब्द इतने महत्वपूर्ण है, और ये किसके लिए चाहते हो, सेवा करने के लिए। इसलिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, ये भगवान विवृद्ध प्रेम स्मित अधभ्र करुणा भगवान, कि आप क्या करो, मुझे करुणा दो, मुझे सेवा दो, ताकि मैं आपकी सेवा में संलग्न रह सकता हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है,
हमें समस्या में से भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, तो हमें शरीर में तकलीफ होती है, हमें तकलीफ देते हैं, हमें दीवार तकलीफ देती है, हमें काम को लोगों तकलीफ हो रहा है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
तो इसलिए भगवान ने दिया, हमने बताया ना सत्य, इनका प्रश्न है हमें सही में तकलीफ होती है, भूख लगती है और आंखें दर्द करती है, ठंडी होती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए गीता के अनुसार वो सब क्या है, सेंस परसेप्शन है। 2.14 कौन सा श्लोक है, मात्रा स्पर्श तो कौन सा है, भगवान उसमें क्या कहते हैं, अर्जुन दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन को इंजीनियर कैसे अनुवाद करोगे, नहीं, परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि महसूस करना. यस, महसूस. महसूस का हिंदी शब्द क्या है? अनुभव करना. अनुभव करना, अनुभव. अनुभव यानी कि इमेजिन करना. अभी मुझे ठंडी लग रही है, वो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को. तो ऐसे सेंस परसेप्शन को कृष्ण क्या कहते हैं कि इसको सहन करो. लेकिन जब हम सहन नहीं कर सकते हैं तो चाहो सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं ठीक है मेरे पास आ रहा है, कम से कम, कम से कम मेरे पास आ रहा है. लेकिन कृष्ण कहते हैं ये तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ज्ञानी, ज्ञानी भक्त जो इन चीजों को नहीं मांगता, ये चीज नहीं मांगता. इसलिए क्योंकि हमने अब्सॉर्प्शन हमारा ज्यादा है. जैसे भीष्म देव देखो, उनको पूरा बाण की सजा में सोना पड़ा, कुछ नहीं दर्द हुआ उनको. नहीं हुआ क्या? हुआ, हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको सहन कर रहे थे क्योंकि शारीरिक स्तर पर थे नहीं. हमारा शारीरिक स्तर है और उसके ऊपर इमेजिनेशन और ज्यादा है. दर्द नहीं होने पर भी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा ध्यान लगा उसको कहते साइकोसोमेटिक. लिरिकली जब देखा जाए कुछ नहीं है, लेकिन हमने कन्विंस किया है, कन्विंस किया है. तो कन्विंस करने के कारण एक्चुअली पैदा हो जाता है वहां दर्द. इट्स अ रियलिटी. वेन यू थिंक अरे इधर दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, तो उधर आ जाता है. ये एक्चुअली फील, आपको लगता है कि वहां दर्द है. डॉक्टर सब प्रयास करता है, दर्द नहीं है, उसके क्लिनिकली कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन आप लगता है अभी मैं एलोपैथिक जाऊं, अभी होम्योपैथिक जाऊंगा, क्योंकि एलोपैथिक वाले को समझा रहे, फिर मैं आयुर्वेदिक के पास जाऊंगा, फिर नेचुरोपैथिक करूंगा क्योंकि दर्द हो रहा है. दैट इज साइकोसोमेटिक. तो वैसे ही कई दर्द इमेजिनरी है, कई दर्द रियलिटी इमेजिनरी है भी है, लेकिन उसको ज्यादा हम महत्व देते. इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक शास्त्र में एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ यानी कि सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये महत्वपूर्ण है. और दूसरा प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफस्टाइल एंड देन कन्वीनियंस सेंटर्ड लाइफस्टाइल. कन्वीनियंस सेंटर्ड लाइफस्टाइल यानी कि आपको कौन सा कन्वीनियंस क्या है, आपको अच्छा, शरीर को अच्छा कौन सा लगेगा उसको महत्व. प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफस्टाइल यानी कि अगर आपका प्राण भी चला जाए आप अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ोगे. कन्वीनियंस सेंटर्ड लाइफस्टाइल लेने की क्या, सिद्धांत चला भाड़ में गया लेकिन मुझे कन्वीनियंस होना चाहिए, मेरे शरीर को तकलीफ नहीं होना चाहिए. और एनिमल सेंटर्ड लाइफस्टाइल है. एनिमल सेंटर्ड लाइफस्टाइल मैंने कि वहां भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, जीते रहो जानवर के समान. तो इसलिए हमें महत्व कौन सा है, कौन से किसी चीज को महत्व देना है. हमारे जो प्रिंसिपल, मैंने वचन लिया गुरु के सामने, चार नियम का मैं पालन करूंगा, एंड इज अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफस्टाइल कि जान जाएगा लेकिन ये वचन नहीं जाएगा. भौतिक जगत में कलयुग में खास करके जीवित रहने के लिए महत्व दिया गया है, लेकिन पुराने युग में क्या था, सिद्धांतों को अगर पालन नहीं हो रहा हो वो उसको महत्व दिया गया, लाइफ को नहीं. इसलिए पहला प्रश्न ही उठता है सबका, हाउ इज योर हेल्थ, हाउ इज योर नोज, ये प्रश्न पूछते हैं. लेकिन मनु संहिता कहते हैं कि ये प्रश्न एक बहुत घटिया प्रश्न है, ये पूछना चाहिए कि आप आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ. क्योंकि हम लोग स्तर पर नहीं है इसलिए भक्त लोग भी प्रश्न करना पड़ता है. नहीं तो लोग कहते रहे प्रभु जी मेरा देखभाल करते ही नहीं, मेरे बारे में कभी पूछते नहीं कि मुझे कुछ बीमारी है क्या, ताकि हमें प्रोत्साहन देने के लिए प्रश्न करना पड़ता है. गुरु जी प्रश्न करते हाउ इज योर हेल्थ, हाउ इज योर नोज रनिंग, तो फिर अच्छा लगता है. हाँ ठीक है, फिर अभी जब पकड़ेंगे बालम राइस और घी मिलेगा तब हरिनाम. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा। इसलिए अल्टीमेटली सिद्धांतिक दृष्टि से देखना, सैद्धांतिक दृष्टि से क्या है, ये केवल हमारा विचार है, इट इज आवर इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन नहीं होता तो फिर जैसे मैंने कहा जो गलत चीज है, जो सही है नहीं, जो भूषण नहीं है उसको भूषण बनाना। बाल भूषण नहीं है, डॉक्टर को पूछ सकते हैं, वो एक अनवांटेड चीज है, नाखून अनवांटेड चीज है, तो उसको भी क्या बना के रखा है, डेकोरेशन बना के। और खास भक्त लोग करते हैं तो फिर पित्त चढ़ जाता है, वेस्टिंग। उतना पैसा अगर लोग देंगे अपने बाल को सजाने में और अपने होंठ को सजाने में, अपने नेल को सजाने में, उतना एक यहाँ और अल्टर बन जाएगा भगवान का, हमारे नया मंदिर का। भक्तों के लिए नहीं चाहिए वैसा करना, नॉट रिक्वायर्ड। और ब्रह्मचर्य अलग अलग तेल लगा करेगा सिर पर, और कमी से कमी करता रहे आधा घंटा, बाल नहीं है फिर भी। इसलिए तपस्या है कि शरीर को सुखाना, कैसे सुखाना, सेवा करके। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा वेजिटेबल इट इज फ्रेश यूज इट, जब सब्जी ताजा है उसको उपयोग करना चाहिए। अगर सूख गया, आलू सड़ गया, तो फिर फुटबॉल वाले भी नहीं लेंगे उसको, वो तो और भी ताजा उपयोग करते हैं, क्योंकि ISO 9002 उनका ट्रेडमार्क आया है ना, माधव कंट्रो नहीं है, आएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरा बीमारी भी महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत है, हम लोग नहीं पालन कर रहे हैं, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो, लेकिन ये सिद्धांत है। इसलिए किसी भी अवस्था में हमारी भक्ति है वो छोटे नहीं चाहिए, कृष्ण ही हमारे जीवन में प्रमुख स्थान होना चाहिए, गुरु ही हमारे जीवन में प्रमुख स्थान होना चाहिए। कृष्ण गुरु ही प्रमुख स्थान किसी भी अवस्था में, उनका स्थान अगर प्रोमिनेंट नहीं रहेगा फिर वो गलत हो जाता। इसलिए परसेप्शन है ना, जो इमेजिनेशन, एक गीता का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है 2.14, एक की के समान है, चाबी के समान, ट्रेजरी है। ट्रेजरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग रे डायमंड्स है, मनमना भाव मत भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य अनन्य चिंतयन तमाम, ये डायमंड के समान है, लेकिन वो बंद है, वो खोलने के लिए चाबी चाहिए। वो चाबी क्या है, 2.14 मात्रा स्पर्श स्तुपांते। कृष्ण साफ साफ कहते हैं योगेश्वर है, अष्ट सिद्धियों के स्वामी है। किसी ने कहा, एक श्री वैष्णव आचार्य ने कहा अष्ट सिद्धि योगियों के पास होती है, कृष्ण योगेश्वर है इसलिए उनके अष्ट महिषी है। इसलिए भगवान योगेश्वर है और वो कह रहे कि अर्जुन इसको सहन करो। कृष्ण ये नहीं करे कि अर्जुन मैं इसको ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर, ऐसा करके कुछ दे दूंगा तुमको फिर सारे समस्या दूर हो जाएगी, ऐसे देखा बोला यू हैव टू टॉलरेट। तो ये रहस्य को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक हम बदलने का प्रयास करते रहेंगे, इसको बदलो उसको बदलो, फिर हम भौतिक जगत से बदलना पड़ेगा, तो फिर बदल भी जाओ उसको भी बदलो, फिर वो भौतिक जगत ही रहेगा। एनीथिंग वी वॉन्ट टू चेंज दैट इज मटीरियल, बट एनीथिंग वी वॉन्ट टू ट्रांसेंड दैट इज स्पिरिचुअल। चेंज यानी कि भौतिक, दिव्यत्व को प्राप्त करने की अध्यात्म। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे कि बदलो मत, सहन करो। वो अगर ठीक खुल गया तो फिर मन मना भाव मत वक्त अनुभव कर सकेंगे, अन्य निश्चिंत अनुभव कर सकेंगे, सर्वधर्मान परित्यज अनुभव कर सकेंगे, यत्र योगेश्वर है कृष्ण उसका अनुभव कर सकेंगे। वो सब ज्वेल्स है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन है कृष्ण का 2.14 सहन। इसके अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं, टॉलरेट नहीं, ये तुमको सहन करना ही है, इससे भागोगे नहीं आप। भीष्म और द्रोण उनको मारना ही है, इसको नहीं छोड़ोगे, यू हैव टू किल देम, प्रभुपाद जी ने एक बार दो भक्तों को बुलाया, बोला आ जाओ, रात के समय था और उनको गीता का पुस्तक दिखा, बोला कृष्ण का भक्त बनना कोई आसान नहीं है, देखो मारना पड़ता है अपने दादाओं को, बोले जाओ अभी भेज दिया वापिस। कितने इसीलिए बुलाया था, कृष्ण भक्त बनना आसान नहीं है, ये सब सहन करना होगा, लेकिन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब बने अदब भर भगवान और विवृत प्रेम स्मित एक कृष्ण के दो गुण। और कोई रघुवीर जी इधर रहो, अपने आप बढ़ जाए। एक व्रत ले लिया कि इधर ही रहना है, तो अपने आप बढ़ जाता है। अगर भटकने का प्रयास करेंगे तो जैसे वो होता ना निर्वासी लोग भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। जैसे एक उदाहरण दिया किसी ने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कोई एक बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, वो देखता है कि बहुत बड़ी लाइन है डॉक्टर के पास, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उधर भी बड़ी लाइन है, बोलता है ये दोनों एलोपैथी बहुत बड़ा लाइन है, फिर वो आयुर्वेदिक के पास जाता है, आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा करके अलग अलग डाइट कहता है ये सब करना है, ये सब करना है, फिर पानी में गर्म करके इसको फिर आधा पानी करो, एक लीटर पानी लो फिर उसका आधा पानी करो, तो बोला अरे बहुत कठिन है, ये भी अच्छा नहीं। फिर होम्योपैथी के पास जाता है, उस भी उधर भी बहुत सारे उसको शक्कर अच्छा नहीं लगता, तो छोटे छोटे बॉटल बोले ये भी कठिन है, फिर सोचता ठीक है बीमार रहना ही अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति ये इतना भटक रहा है एक जगह से दूसरी जगह में, उसकी बीमारी दूर कैसे होगी? बीमारी दूर नहीं होगी, सहनशीलता नहीं। तो इसलिए सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? सहनशील बनना पड़ेगा, स्टेडीनेस, एक ही जगह में रहकर सेवा करते रहना, चंचल नहीं बनना। क्योंकि हमने व्रत अभी ले लिया कि चार नियम पालन करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। भक्ति चरण महाराज को प्रभुपाद जी ने कहा तो बहुत भटका तुमने, कितने सारे योनि में बहुत भोग किया, अभी आगे भी जाके करोगे कम से कम ये लाइफ है ना मैं कृष्ण को दे दूं, ट्राई करो, अगर हो गया अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर है ना बहुत सारा जीवन माया को देने के लिए। तो उनको आइडिया अंदर स्ट्रांग है, उन्होंने अभी तक दिया हुआ है कृष्ण की सेवा के लिए। जना मैं अष्टो कम कर जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण है, एक ही जगह में रहकर सेवा कर रहे हैं। स्टडीनेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे रूच डीप चले जाएंगे, फिर अनुभव साक्षात्कार बहुत आएगा। ये कलयुग का लक्षण है चेंज, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। पहले हम लोग हैंडकर्चिप यूज करते थे, टिश्यू पेपर यूज करते थे, हैंडकर्चिप कम से कम एक दो साल चलाते लोग, उसको यूज करो फिर साफ करो, लेकिन अभी क्या टिश्यू पेपर यूज करो फेंक दो, यानी कि पॉल्यूशन। वैसे ही हमारा मेंटालिटी, भक्ति को यूज करो वापरो, थोड़ा देर के लिए यूज करो फिर छोड़ दो, इसलिए कुछ भी हो जाए रहना इधर ही कृष्ण भक्तों के संग में, कृष्ण भक्ति में रहने से फिर अपने आप धीरे 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 देखते देखते व्हाट इज अवर लाइफ, हमारा जीवन क्या है, कोई कह सकता है कि आप कितने वेव हुए हैं समुद्र में, लहर कितने आए हुए हैं, कोई कह सकता है? और कोई जैसे ये लहर का ना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल लहर था, ऐसा कोई कह सकता लाखों करोड़ उसकी कोई सीमा नहीं है, कब तक रहता टाइम लिमिट क्या उसका, कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही हमारा जीवन नॉट मच इम्पोर्टेंट इन द वेव्स इन द ओशन, कोई बड़ी नहीं, लेकिन हम क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस को ज्यादा महत्व देते हैं अभी मेरा वो हो रहा है, अभी मेरा ये चल रहा है, अभी मेरा मन काम नहीं कर रहा, अभी मेरी बुद्धि सब ठीक नहीं है, अभी मेरा नाक ठीक नहीं है, मतलब बार बार केवल अपने बारे में चर्चा। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, प्रभुपाद जी ने कहा था समाल कृष्ण महाराज, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जब ये भावना को छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे कैसे छूटेगा? इसलिए कम्युनिटी, कलयुग में कम्युनिटी में रहते हुए सेवा करना अपने आप अपना स्थान कम बन जाता है, यू बिकम इनसिग्निफिकेंट। 100 भक्तों में से अगर बीच में अगर बैठे हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज जो प्रवचन दे रहा है उसको कल नीचे बैठकर सुनना पड़ता है, हर रोज प्रवचन नहीं दे सकता, फिर जीबीसी के पास कंप्लेंट जाएगा, ये हर रोज प्रवचन दे रहा है, क्या समझता है अपने आपको? अच्छा भी देगा तो भी उसको नीचे बैठकर सुनना पड़ेगा, यानी कि किसी को महत्व तो नहीं दिया गया कृष्ण के अलावा। तो वैसे जगह में रहना चाहिए जहां महत्व तो नहीं दिया गया, जहां आपको भगवान करके, और एक हमारे आश्रम में थे, आलसी थे काफी सेवा करने में, फिर वो चले गए ऋषिकेश, अभी बहुत बड़े गुरु बन गए उधर, उन्होंने अपना खुद का आश्रम खोल दिया। लोग कहते हैं देखो कितने ध्यान में लगाकर बैठे, आलसी एक्चुअली काम नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं, तो उनको लोगों ने क्या कर दिया, बड़ा गुरु बना। ट्रू स्टोरी अगेन। तो आपके लिए अवकाश है, हमारे लिए सबके लिए, कि यहाँ नॉन एंटिटी बनना है या बाहर जाकर किसी भी गांव में थोड़ा अगर अलग प्रकार का ध्यान लगाओ, हाथ में डंडा ले लो और इधर उधर आकाश में देखते रहो, फिर देखते देखते गुरु बन जाओगे। कलयुग में गुरु बनना कोई बड़ी बात नहीं, देखते देखते देर इज नो अली बड़ी खंड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे कृष्ण नहीं मिलेंगे, और जो हमारी सेवा करेंगे वो भी नरक, हम भी नरक, और जब तक वो लोग नरक में रहेंगे तब तक हमको ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों के गुरु थे। लेकिन यहां रहेंगे श्री प्रभुपाद जी के चरणों में तो नॉन एंटिटी रहेंगे, नॉन एंटिटी रहेंगे, कोई अस्तित्व नहीं, तो कोई अस्तित्व नहीं उसमें क्या होगा, हमारी प्रगति होती जाएगी, तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, परंतु इसका पालन करने के लिए हमें प्रयास कर, ये जानना चाहिए कि मैं कोई नहीं, कृष्ण सब कुछ है। जब संघर्ष होगा ना, मैं कॉन्शियसनेस और कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को महत्व देना, कृष्ण भावना को महत्व देना, कि न तो हमारे दुर्गुणों को ज्यादा महत्व देना, न तो हमारे गुण तो है ही नहीं कलयुग में किसी के पास, उसको महत्व देना, कृष्ण के अदब्र करुणा भगवान निवृत्त प्रेम उसमें, उसको ज्यादा महत्व देना, तब फिर क्या होगा, फिर काम आसान हो जाएगा। इम्पोर्टेंस यूर्सल, अपने आप को जब महत्व दोगे तब क्या होगा, सब समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए भक्ति बहुत ही सुंदर है, एक ही ऐसा प्रोसेस है जहां अपने आप को महत्व नहीं दिया जाता, परंतु कृष्ण जीव को ये विषय नहीं चर्चा करेंगे, फिर से हम लोग अपने आप को महत्व देने लगेंगे। कृष्ण जैसे जीव का अंतर्यात्मा कृष्ण है, कृष्ण का अंतर्यात्मा भक्त है। विदाउट डिवोटीज कृष्ण इज लाइक व्हाट, इज लाइफलेस। महाभारत में अर्जुन के बारे में कृष्ण कहते हैं, अगर अर्जुन नहीं बचेगा तो मैं नहीं जीवित रहूंगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो अर्जुन नहीं रहेगा, जो जयद्रथ के साथ युद्ध करना चाह रहे थे। इसलिए कल मैं उस जयद्रथ को अगर अर्जुन नहीं मारेगा तो मैं खुद ऋषभ इस स्वर पर मेरा शंख बजाकर मैं सत्य दारुका को बुला लूंगा, और केवल जयद्रथ में सब सारे कौरवों को नाश कर दूंगा। तो भगवान को अच्छी नींद लग गई, परंतु भगवान के कॉन्शियसनेस को डोमिनेट करने के लिए हमें हमारी भावनाओं को छोड़ना होगा। यानी कि वह हम जब मजा कब आता है, भक्ति का आनंद कब आ जाता है, कि अपने बारे में सोचना बंद करेगा, बुरे और अच्छों के बारे में, मेरे बहुत बुरे गुण हैं। अरे बोला है ना सोलामाला जप करो, छोड़ दो अपने बारे में सोचना, तब फिर आनंद से आप डांस कर सकते हो, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे, वजन नहीं है, हल्का हो गया। तो भगवान कृष्ण महाराज ने कहा रेज योर हैंड्स इन द कीर्तन लाउडली, दैट मीन्स देर इज नो बर्डन, वहां भोजा नहीं। समझा रहे जीवन क्या है, हर रोज 4:30 बजे उठकर किसको डांस करने में मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लोग रात के समय जाते हैं 12 बजे और पैसा देते हैं। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुबह लगा हुआ सर, क्या कह रहे थे प्रभुपाद जी फ्रांस के बारे में कह रहे थे, बोले ओल्ड पीपल 80 years old, आई हैव सीन पर्सनली देर गोइंग टू नाइट क्लब्स एंड देर पेइंग $100, देर पेइंग $50 एंड दे कांट इवन सी प्रॉपरली एंड दे वांटिंग टू वॉच यंग वुमेन, दिखते भी नहीं आके लेकिन फिर भी $150 देकर साधारण, लेकिन कुछ देना नहीं पड़ता और उसका लाभ क्या है, गोलोक वृंदावन। और क्या चाहिए, इतना सब मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन फिर भी मन कहता है नहीं नहीं मुझे और अलग कुछ करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञान है, टू थिंक दैट इज समथिंग हायर देन एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अनदर वन काइंड ऑफ इग्नोरेंस। महाभारत ने 5 प्रकार के अज्ञान का वर्णन किया। एक अज्ञान यह है कि सोचना कि भगवान से या परम सत्य से ऊपर और कुछ है, तो मन ऐसा हमें देता है, देयर इज समथिंग हायर देन इट, देयर इज समथिंग हायर देन इट। इसलिए हमें अपने आप को महत्व न देते हुए हमारे सेवाओं को महत्व देकर कृष्ण को महत्व देंगे तो भक्ति का असली आनंद, रियल हैप्पीनेस विल एक्सपीरियंस, देन वन बिकम्स हैप्पी ब्लिसफुल। ये दूसरा गुण है भक्ति का, क्लेशाग्नि शुभदा, क्लेश खत्म हो गए और शुभदा यानी कि क्या, केवल हंसते रहो ज्यादा नहीं, जैसे ऐसा 10% 20% ठीक है, लेकिन ये है भक्ति कि अपने अपने बारे में सोचना नहीं, कम सोचना, नहीं सोचना, और अपने बाल के बारे में, अपने नाखून के बारे में, अपने आंखों के बारे में, अपने जीवा के बारे में, वो सोचने के लिए हमारे अच्छे तरह जो है हो जाएंगे सब। इतने फर्स्ट टाइम आप रघुपति हार्ट अटैक, या प्रभु जी ने उनका अच्युतानंद प्रभु और 2-3 डॉक्टर लोग उनके परिश्रम से भगवान ने उनको एम्पावर किया रघुपति प्रभु को बचाने के लिए। रघुपति प्रभु अच्युतानंद प्रभु है वो सब हमारा सोचते रहते, उन्होंने बहुत प्रयास किया, कहां कहां तक ने सब कहानी सुनी है, उनको मोबाइल भी नहीं था, रिक्शा वाला टैक्सी वाला का मोबाइल लेकर, ऐसी ब्रेनी है तो उनको नंबर भी याद आ गया, जिसको कभी फोन भी नहीं करते, उससे कभी संबंध भी नहीं होता, उसी डिवोटी को उन्होंने फोन लगाया, परमात्मा ने उनको डायरेक्टरी खोल दिया फोन का, वही नंबर लग गया, फिर वो घर से आए हॉस्पिटल, उन्होंने सारा फैसिलिटीज अरेंज किया, फिर 45 मिनट शॉक दे रहे दबा रहे, तो वो ले देखने के लिए कुछ हो गया तो, अगर नहीं चाहते तो भी देखने के लिए आएंगे, राइट। विल स्टॉप हियर। गंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, गोविंद प्रभु की जय।